ईयू नेशन है, ईयू बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है. जैसे मिल्क है, उसका प्राइस तुम बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते, एग इंक्रीज नहीं कर सकते, जो स्टेपल प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट तुम प्राइस को नहीं इंक्रीज कर सकते. तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इनको बेयर करना पड़ता है, मतलब रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बेयर करना पड़ता है. एंड विच इज ऑल्सो राइट, बिकॉज देखा जाए तो प्रोडक्ट्स आर मार्क्ड अप 60% फूड प्रोडक्ट्स. तो अगर 10 यूरोस का कोई चॉकलेट है, 10 यूरोस का कोई चॉकलेट होता नहीं, बट फिर भी अगर 10 रुपीज का कोई चॉकलेट है, इट इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड इन 4 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 6 रुपीज प्रॉफिट. तो 60% का मार्कअप एंड मोस्ट ऑफ दिस मनी गोज टू द मिडिल पीपल. फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिलता.
So, Nivedha, thank you so much for coming to the Scientific Gujarati show. How are you?
I'm good. How are you?
I'm good too. See, यहाँ पे यश भी है, उसको भी पूछ लेते हैं.
I'm also good. बढ़िया बढ़िया.
So, क्या चल रहा है अभी? Study.
तो अभी मैं currently मेरा master course है. It's called International Food Business and Consumer Studies. Course काफी flexible है. It includes almost everything. मतलब थोड़ा food quality का भी है, food product development का भी है. But main उसका idea ये है कि how to use consumer data to in food industry. तो बेसिक आइडिया वो है कि कंज्यूमर डेटा को फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज करें एंड कंज्यूमर डेटा को फिर हम कलेक्ट कैसे करेंगे. तो दैट वुड बी फ्रॉम मार्केट रिसर्च, कि हम लोग किस तरीके से मार्केट के अंदर रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, कि कौन सा टाइप का डेटा कलेक्शन होता है एंड वो कंज्यूमर अपना फीडबैक देती है और उस बेसिस पे हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं या प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं. तो मेरा आइडिया, मतलब मेरे को जो करना है, मेरा जो बेसिक फोकस है वो है मार्केट एनालिसिस और कंज्यूमर इनसाइट. तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन मार्केटिंग, के किस तरीके से प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर पोजीशन करना है और कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर, कंज्यूमर साइकोलॉजी. एंड दूसरा ये बोल सकते हैं कि कैसे सस्टेन करना है मार्केट में, कि एक बार अगर आप फुल प्रोडक्ट को लेके मार्केट के अंदर आ गए, फिर उसके बाद कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को कितना रखना है और फिर कंज्यूमर्स को उसके साथ रिटेन कैसे करना है, तो वो पूरी चीज. तो अभी करंटली मेरा स्टडी और मेरा एम यही है कि मैं इसी जगह पे जाऊँ और ऐसी ही जगह पे काम करूँ.
अच्छा, तो इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो बिजनेस साइड से सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि मतलब बिजनेस चलना चाहिए, कि इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं, मतलब ऐसा कुछ सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए कि देखो मतलब ये है, इसमें काफी पानी यूज हो रहा है तो कम पानी यूज करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे.
हाँ, वो मतलब ऐसा सस्टेनेबिलिटी एक कभी टेक्निकली देखा जाए तो वेरी न्यू टर्म, न्यू मतलब ट्रेंडी टर्म इन फूड इंडस्ट्री, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना कोई सोचता नहीं था कि भाई कितना पानी यूज हो रहा है.
कितना पहले मतलब
टेक्निकली देखा जाए तो बेसिकली 2000s के पहले किसी ने ये टर्म को इतना फूड इंडस्ट्री में,
मैं मतलब हाँ मैं वही सोच रहा था, 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ऐसे.
तो सुन रहे कोई भी ऐसा किसी इंडस्ट्री ने ऐसा बोला नहीं. तो अभी वो थोड़ा इशू निकला है कि हाँ मतलब वाटर बहुत यूज हो जाए, बिकॉज आई थिंक एक किसी यूनिवर्सिटी ने पेपर प्रिंट किया था ये देखते हुए कि एग्रीकल्चर में कितना फ्रेश वाटर यूज होता है. एंड इट केम टू दिस पॉइंट के इफ यू टेक ऑल द फ्रेश वाटर इन अ कंट्री, के कंट्री में कितना फ्रेश वाटर है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज इज यूज्ड इन आइदर एग्रीकल्चर और इन डेयरी. तो एंड मैक्सिमम कंजम्पशन में उधर है. तो या सो दैट केम एज अ पॉइंट कि सस्टेनेबिलिटी का भी होना चाहिए, बट मैं कहूँ तो कंपनीज आर नॉट दैट कंसर्न.
या आई अंडरस्टैंड,
वो तो आई थिंक हर सेक्टर में हर जगह है मोस्टली.
हाँ
या हाँ, कंपनीज आर नॉट एट ऑल कंसर्न. ऑल्सो देखा जाए तो कंज्यूमर भी काफी कंसर्न नहीं है. तो हमारा लाइक बेसिकली एज अ कंज्यूमर रिसर्चर हमारा आइडिया ये है कि कंज्यूमर को अवेयर करो कि वो राइट प्रोडक्ट्स को चूज करे, सो दैट कंपनीज बोले कि अच्छा ओ कंज्यूमर ऐसा प्रोडक्ट चूज करे तो हम भी अपने आइडियाज को चेंज करें. सो दैट इज व्हाट वी एज अ कंज्यूमर रिसर्चर वांट टू डू. बट टेक्निकली कंपनीज को प्रॉफिट से मतलब है, सो दे डोंट केयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी.
एक टॉक्सिक फीडबैक लूप है ये, पहले मुर्गी आई या अंडा ऐसे.
बल्कि अभी कितना चल रहा है कि जो SDG 17 है, अगर उसका कोई मैप देखे तो एवरी SDG इज कवर्ड बाय फूड. तो देयर इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, इट इज कवर्ड बाय फूड. लाइफ बिलो वाटर कवर्ड बाय फूड. लाइफ ऑन लैंड कवर्ड बाय फूड. जीरो हंगर कवर्ड बाय फूड. क्लीन वाटर या समथिंग वो भी कवर्ड बाय फूड. एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग वो भी कवर्ड बाय फूड. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड बाय फूड. बट कंपनीज आर लाइक के ठीक है जितना पैसा मिल रहा है वी आर डन. वी डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग. वी डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीवनस वेलबींग. सो हाँ वो एक इशू है. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. There are also very small companies who are completely focused on sustainability because of labels. जो भी sustainable labels हैं, fair trade का label है. EU में जैसे EU label है, यश ने तो काफी देखा होगा हर एक product में EU और
क्या होता है. क्या EU label क्या होता है?
So EU label basically it's a certification body जो recognize करता है कि तुम्हारा जो product है वो EU का है या EU में ही origin है उसका.
okay.
and वो organic है. तो EU label organic करके एक बड़ा सा label है. फिर there is also ये
क्या कहते हैं का है वो chocolates के वो products में आता है.
चॉकलेट में ही वो है. रेनफॉरेस्ट अलायंस का है जो मतलब चॉकलेट प्रोडक्शन को यू नो चॉकलेट प्रोडक्शन के वैसे कहीं बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए. तो ऐसे काफी लेबल्स के वैसे काफी कंपनीज ने उसको अडेप्ट करना चालू किया. दैट इज बिकॉज कंज्यूमर्स ने बोला कि वो ये लेबल काफी इंटरेस्टिंग है और ये लेबल होना चाहिए. दैट इज द ओनली रीजन कि फिर कंपनीज को अडेप्ट करना चालू किया. उसके पहले कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं थी.
तो उस लेबल के ऊपर कुछ इनसाइट्स मतलब मिलता है क्या? मतलब से पब्लिक डेटा टाइप की है, ये लेबल लगाने के बाद इतना कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ ऐसा कुछ?
हाँ, तो उसके बेसिस पे काफी रिसर्च होता है. तो देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जो रिसर्च होता है वो दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे WTP. काफी जगह पे ऐसा लोग सुनते हैं विच इज कि हम लोग कंज्यूमर्स को ऐसा पूछते हैं कि अच्छा अगर इस प्रोडक्ट में ये वाला पर्टिकुलर लेबल हुआ आर यू विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड देन कंज्यूमर्स हु आर इकोनॉमिकली वेल जैसे ग्लोबल नॉर्थ में है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में दे आर लाइक हाँ ठीक है वी वांट टू पे मोर फॉर समथिंग विच इज ऑर्गेनिक विच इज सर्टिफाइड विच इज लाइक बेटर फॉर द एनवायरमेंट करके. तो वो तो भी है.
yeah. आई थिंक डेटा कलेक्ट होगा तो फिर बाद में उससे पता तो चलेगा ही कि लेबल से एक्चुअल कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं होता है और वो भी राइट डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है.
एग्जैक्टली.
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर लेबल लगा दिया तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएगी.
हमारा फायदा ये हो सकता है कि जैसे EU नेशन है EU बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है. जैसे मिल्क है उसका प्राइस तुम बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते. एग इंक्रीज नहीं कर सकते. जो स्टेबल प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट तुम प्राइस को नहीं इंक्रीज कर सकते. तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इनको बेयर करना पड़ता है मतलब रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बेयर करना पड़ता है. एंड विच इज ऑल्सो राइट बिकॉज देखा जाए तो प्रोडक्ट्स आर मार्क्ड अप 60% फूड प्रोडक्ट्स. तो अगर 10 euros का कोई चॉकलेट है 10 euros का कोई चॉकलेट होता नहीं बट फिर भी अगर 10 rupees का कोई चॉकलेट है इट इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड इन 4 rupees एंड सोल्ड फॉर 6 rupees प्रॉफिट. तो 60% का मार्कअप एंड मोस्ट ऑफ दिस मनी गोज टू द मिडिल पीपल. फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिलता. फार्मर्स को मिलता होगा शायद 50 rupees पर किलो और सम 50 rupees पर किलो ऑफ चॉकलेट. एंड उसका तुम कोई भी यूज नहीं करते एक चॉकलेट बार में. तो फार्मर्स गेट्स नथिंग. कंज्यूमर हैव टू पे सो मच ऑल फॉर द मिडिल पीपल. तो अभी उन्होंने वो सारा एसोसिएशन स्टार्ट किया है ये लेबल्स और वो सब के थ्रू. सो यू वुड नो कि सब लोग को फेयर मनी मिल रहा है. पीपल आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट.
और दूसरे छोटे छोटे न्यूएंसेस भी बहुत होते हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि एक चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के अंदर कितना रिसोर्सेस यूज हुआ है राइट. बट उसको पैकेजिंग भी तो कर गए हैं. प्लास्टिक का रैपर लगा गए हैं. फिर मल्टीपल जितनी महंगी चॉकलेट उतना मतलब बड़ा रैपर है कि एक हम सिल्वर रैपर लगाएंगे फिर उसको एक प्लास्टिक के कवर में डाल के उस पर एक कार्डबोर्ड का वो लगा के फिर भेजेंगे. एंड देन फिर अगर वो मल्टीपल अगर 10 के बंच में आता है तो उसका अलग पैकेजिंग फिर उसके ऊपर और एक पैकेजिंग और होलसेलर्स. तो ये कितना कबाड़ा होता है ना, मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्ट जो कंज्यूम करने के लिए। इवन आई थिंक कहीं पे था कि कोई सुपरमार्केट का ही कोई फोटो था कि बनाना, एक इंडिविजुअल बनाना को उन्होंने रैप
ये मेरे को बहुत,
करके
मतलब ये थोड़ा मेरे को एक मेरा एक बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है इसमें, बिकॉज पैकेजिंग हम लोग जिस तरीके से देखते हैं वैसे टेक्निकली यूज होता है, दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ पैकेजिंग.
ओके।
तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे स्टोर में बनाना है, बनाना के ऊपर पील है, उसके ऊपर एक और पैकेजिंग डालने का क्या मतलब है. बट दैट बनाना हैज ट्रेवल्ड मे बी फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वो पूरे रास्ते जस्ट टू इंश्योर के द बनाना इज नॉट स्क्विश्ड, द बनाना इज नॉट डिस्ट्रॉयड. और जब तक तो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास एक येलो बनाना आना चाहिए, तुम ब्लैक बनाना या स्क्विश्ड बनाना तो नहीं खरीदोगे. तो जस्ट टू इंश्योर कि वो कस्टमर के लेवल को दे सेटिस्फाई करे, तो ये पैकेजिंग की चीजें उठानी पड़ती है, प्रॉब्लम्स उठाना पड़ता है. दैट इज द सेम थिंग कि हम यहाँ पे रहकर बोल सकते हैं कि क्यों, क्या फर्क पड़ता है, वी कैन जस्ट रिमूव पैकेजिंग फ्रॉम पास्ता, वी कैन जस्ट रिमूव पैकेजिंग फ्रॉम टोमेटो, सॉरी ये सब ऐसे हटा दो, पैकेजिंग जरूरत नहीं है. बट यही प्रोडक्ट जब कोई और दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कोने में जा रहा है, तो वो हेल्थ इश्यू में आ जाता है कि भाई कुछ उसमें पास्ता में किसी ने टच कर दिया उसको, कहाँ कौन से हैंड्स के थ्रू गया है, कितना डस्ट उस पर लग गया. यू कांट जस्ट से नो टू पैकेजिंग. तो अभी हाँ, नया अभी जो ट्रेंड फूड में चल रहा है दैट इज मिनिमल पैकेजिंग, के मतलब जितना कम पैकेजिंग तुम यूज करो उतना बेटर, कि बल्क में चीजें ट्रांसपोर्ट करो, बल्क पैकेजिंग रखो, उसको फिर इंडिविजुअल जगह पे इंडिविजुअल चीज नॉन पैकेजिंग की तरह रख दो, या फिर लोकल डेवलप करो, कि अगर जैसे पास्ता मिल्क और ये सब है, ये लोकली तुम जाके कलेक्ट करो, तो लोकल में पैकेजिंग की इतनी जरूरत नहीं है. बट दिस नो पैकेजिंग वाली चीज शायद ही आएगी, बिकॉज देर इज ऑफ
नो
कोर्स
पैकेजिंग
ग्लोबली.
लोकल में हो सकता है ना, जैसे इंडिया में कहाँ हम रैप
हाँ
करके वो बनाना खाते हैं
हाँ वो वही है,
तो
लोकल हो
हाँ
सकता.
लोकल में हो सकता है कि हमारे यहाँ पे सारे मार्केट ओपन ही है। वैसे ये चीज क्या है ना कि मतलब जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूँ, मोस्टली इकोनॉमिक्स के या सब वीडियो होते हैं अबाउट फूड टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस स्टफ, तो वो यूरोपियन एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव होता है, फिर हमारे यहाँ पे वो मैच ही नहीं करता। इवन जो वो डेटा भी कभी नंबर्स वो लाते हैं कि जैसे अभी मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि 1/3 ऑफ द टोटल एमिशन जो होता है कार्बन एमिशन, वो फूड में से आता है 33%। तो उसमें भी अभी काफी न्यूआंसेस हो सकते हैं ना कि उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है या कितना साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मीट प्रोडक्शन होता है इंडिया में, सो लाइक डू यू नो कि वहां पे भी मतलब इतना ही वाटर यूज होता है जितना यहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो पूरा एक इंडस्ट्री की तरह वर्क करता है, हमारे यहाँ पे थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर टाइप है।
अगर टेक्निकली मतलब ये दो अलग अलग चीज हो गई, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर यूसेज दो अलग टॉपिक है. जनरली देखा जाए तो ये वाली बात जो है 1/3 ऑफ जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय फूड सेक्टर, व्हिच इज परफेक्टली राइट, बिकॉज फूड सेक्टर में बहुत कुछ आता है, उसमें फूड पैकेजिंग, फूड ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन फॉर श्योर।
पूरा 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 फार्म से लेके फोक तक जो हम लोग बोलते हैं वो पूरा पूरा सिस्टम आ जाता है. दैट इज रफली ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, बिकॉज मेजरली कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर जीडीपी. तो दैट इज ट्रू. बट दूसरा वाटर यूज में अगर आए, तो ऐसा देखा गया है कि फूड इंडस्ट्री टेक्निकली ज्यादा वाटर यूज करती है एंड वाटर पोल्यूशन ज्यादा करती है. तो इंडिया में मेरे को इंडिया का एक बहुत अच्छा केस जो याद है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन से स्टेट में हुआ था, बट जब कोको कोला ने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश की थी, उसका उसका पहला तो ये रेजिस्टेंस था कि हाँ ठीक है, इंडिया में काफी लोकल बेवरेजेस है, जैसे सोसियो पता होगा गुजरात में बहुत फेमस था एक टाइम पे, उसको ब्लैक बेवरेजेस बनाते थे, और कोको कोला इन बेवरेजेस के साथ कंपटीशन में हो गया जैसे जो लोकल इंडियन बेवरेजेस है. बट उसके अलावा इट आल्सो, कोको कोला की फर्स्ट इंडस्ट्री आल्सो डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि उनका इतना ज्यादा वाटर यूसेज था अपनी इंडस्ट्री में कि उन्होंने एक कोई स्टेट का पोल्यूशन लेवल, वाटर पोल्यूशन लेवल को इतना इंक्रीज कर दिया था कि द the farmers were being against Coca-Cola कि भाई तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया था कि तुम चीजें, तुम नॉर्म्स निकालो कि कोका-कोला के इस चीज को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोका-कोला को कोका-कोला टेस्ट में जो उनका फॉर्मूला वगैरह है, उनका टेस्ट में वाटर बहुत मैटर करता है, तो लोग वाटर को बहुत प्रोसेस करते हैं उसको अपने टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज कोका-कोला टेस्ट द सेम एवरीवेयर. तो उस चीज को, उस प्रोसेसिंग में उन्होंने इतना वाटर पोल्यूशन क्रिएट किया था, विच वॉज वेरी बैड फॉर द एनवायरमेंट, वेरी बैड फॉर द पीपल, एंड फ्रेश वाटर वेस्ट हो रहा है फॉर नथिंग, जो तुम्हारे बेवरेज में यूज भी नहीं हो रहा. तो ये वाली चीज बहुत बड़ी इश्यू हुई थी. एंड वो बात एज अ वाटर कंजम्पशन लेवल एग्रीकल्चर और फूड में बहुत ज्यादा है, एंड इट कैन नॉट बी सो कि तुम उसको ट्रीट करके तुमने उसको बेटर कर दिया और तुमने उसको बाकी चीजों में यूज कर दिया, वो भी पॉसिबल है, इट इज जस्ट गॉन. तो वो दैट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल. तो चीजें जैसे अभी एग्रीकल्चर में
नेदरलैंड का कभी देखा है, नेदरलैंड कैसे एग्रीकल्चर करता है,
मिनिमम वाटर वाला,
हाँ, मतलब उनका तो मतलब इट्स लाइक के इट्स अ नेशनल प्रायोरिटी है ये चीज करना, दे वांट टू प्रोड्यूस द, मतलब तो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, जितना उनका वो गोल है, दे आर काइंड ऑफ ऐसे फूड सुपर पावर इन द वर्ल्ड.
मैं
कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर दो टेक्नोलॉजी मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी. एक तो थी कि वो प्लांट को बिहेवियर को स्टडी कर गए थे थ्रू AI, बेसिकली ग्रीन हाउस के अंदर है, ठीक है, एंड दे हैव पुट वो कैमराज रखे हैं, तो मशीन विजन, तो वो ऑब्जर्व करता है, एंड देन वो एल्गोरिथम खुद लर्न करता है कि अभी इस प्लांट को किस डायरेक्शन में, मतलब हम शेप कर सकते हैं ताकि वो बेस्ट उसकी हेल्थ के लिए हो. सो दैट इज लाइक इनसेन, राइट, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है ना, एक तो पूरा मशीन विजन AI यूज कर लिया है, एंड ऊपर से रोबोटिक्स भी यूज कर गए हो कि वो ऑटोमेटिकली उसको शेप कर गए, तो दैट वॉज फैसिनेटिंग. और दूसरा वो मॉथ्स, जो कीड़े होते हैं, तो उनको मारने के लिए ड्रोन्स का कुछ सोच रहे थे, छोटे छोटे ड्रोन्स बनाने का. उनको वो काफी, मतलब एक तो सस्टेनेबल भी बनाना है, कम से कम रिसोर्सेस यूज करने हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंटेन करनी है, एंड दे वांट टू क्रिएट इन अ बल्क के ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना है. तो जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर डेवलप हो गई है, एट द एंड अगर फिर सारी दुनिया तो मांगेंगी उनसे ये टेक्नोलॉजी, राइट, दे कैन या शेयर दैट थिंग, भले ही पैसे ले.
इशू मेरे को इसमें ये लगता है कि जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, और जो भी मशीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम लोग सस्टेनेबिलिटी को एज अ ये नहीं ले सकते कि एनवायरमेंट को कितना फर्क पड़ता है, इट इज ऑल्सो कि तुम सोशली और इकोनॉमिकली लोगों को कितना फर्क पड़ता है. तो एनवायरमेंट एज अ साइंस, मतलब एज अ बायोलॉजी पर्सन, हम लोग एनवायरमेंट में हर चीज को इंक्लूड करते हैं, कि मतलब पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स को भी इंक्लूड करते हैं, अर्थ को भी इंक्लूड करते हैं. तो अगर एक पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ देर इज अ सिस्टम विच इज इंक्लूडिंग, विच इज मेकिंग इट बेटर फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इट डज नॉट मेक सेंस. तो तुम
जितने भी प्रॉब्लम अभी है, इंसान नहीं कर पाएंगे, वी स्टिल नीड रोबोट्स फॉर एवरीथिंग. हमारे पास क्रिएटिव काम करने के लिए काफी है, लेकिन इस पे कभी और बात करेंगे. या बट द लास्ट क्वेश्चन इज दैट के जैसे ओवरऑल ये तुम्हारा अभी जो भी कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज तुम्हारे कुछ प्रैक्टिकल होता है, या लाइक इट्स ऑल डेटा एनालिसिस?
मतलब हाँ, मेरे कोर्स में वी हैड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का लैब था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने किया है. तो हमने एक नया म्यूसली पिच किया था टू कंपनी, मतलब यही जर्मनी की कंपनी है, उसको हमने पिच किया था. वी हैड टू क्रिएट अ न्यू म्यूसली, वो भी पार्ट है, बट देर आर ऑल्सो अदर कोर्सेज चॉइस में भी तुम ले सकते हो जहाँ पे तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिकल करने मिले. बट मैंने बेसिकली थोड़ा डेटा एनालिसिस वो सब की जगह पे ही फोकस किया, बिकॉज मेरे को फ्यूचर में वही करना है. तो क्योंकि फूड टेक बैचलर्स में काफी कर लिया मैंने प्रैक्टिकल, I wanted to move towards more market analysis और वो सब चीजों में.
तो generally मतलब do you have any idea कि जब suppose एक कोई food product में बनाना है right? तो वो scratch to market तक मतलब starting से idea से लेके market तक उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है मतलब.
ओके मतलब हाँ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आइडिया जनरेशन तो ऑफकोर्स मतलब कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरीके से देखते हैं. आइडियली ऐसा होना चाहिए कि तुम एक मार्केट में देखते हो कि मार्केट में कोई टाइप का गैप है. तो जैसे अगर बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे बिस्किट इंडस्ट्री में इंडिया में बहुत होता है. तो अगर किसी ने देखा कि अच्छा बहुत सारे टाइप के बिस्किट है बट एक कोई मल्टी ग्रेन बिस्किट नहीं है तो यू क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज मल्टी ग्रेन. या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो किसी और कंपनी अदर मेथड है कि किसी और कंपनी एक प्रोडक्ट निकाला जो बहुत ही फेमस हो गया तो तुम उसका मीटू निकालने की कोशिश कर रहे हो. तो मीटू इज लाइक अ मिमिकिंग प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट कर सके. तो तुम्हारे पास एक पूरा टीम होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो पूरा टेस्ट करता है कि कौन से चीज हो सकती है इसमें क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसको तुम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स बनाते हो. फिर वो प्रोटोटाइप्स को तुम अंदर ही अपने टीम के अंदर एक पैनल बिठाते हो और उसको टेस्टिंग करवाते हो और पूरा सर्वे लेते हो कि टेस्ट कैसा है चीजें कैसी है इफ इट्स राइट इफ थिंग्स आर सेटिंग वेल विद अदर पीपल एंड ऐसे. और फिर ये प्रोडक्ट फिर जाता है डिजाइनिंग और वो सब के लिए कि तुम उसको कितना बेटर बना सकते हो. तो जैसे ओरियो का जो ऊपर उसका डिजाइन है वो पूरा डिजाइनिंग टीम करती है कि वो किस तरीके से तुम उसमें डिजाइन करो उसका प्रोसेस कैसे डेवलप करो क्या हमारी कंपनी इस प्रोसेस को अफोर्ड कर सकती है क्या नई मशीनरी चाहिए कि नहीं क्या नए प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा क्या कॉस्ट इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा उसका एनर्जी कॉस्ट क्या पड़ेगा. तो वो सब पूरी एक इकोनॉमिक टीम डिसाइड करती है. फिर आता है हमारा पैकेजिंग डिजाइन. तो ये कौन से पैकेज में होना चाहिए तो पैकेजिंग शुड बी इजी टू ओपन कहाँ पे इंसान इसको यूज कर सकता है. जैसे कोई बिस्किट का पैकेट जैसे खोला पूरा हाथ में गिर गया तो दैट मेक्स नो सेंस. तो अच्छे से ओपन हो जाए अच्छे से सेट हो जाए एक एक ही बिस्किट निकले सारा बिस्किट साथ में ना गिर जाए. तो ये बहुत सारे टूटना भी नहीं चाहिए.
हाँ मैं तो सालों से देखा हूँ अभी तक ये प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व क्यों नहीं किया.
प्रोसेस हो गया. फिर बाद में तुम्हारी मार्केटिंग टीम पे आता है कि तुम इस प्रोडक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे. तो कौन से मार्केट में प्लेस करोगे कौन से प्राइस लोकेशन में प्लेस करोगे. तो ये पूरा मार्केटिंग टीम के बेसिस पे आता है. और उसके बाद मेरा काम आता है कि भाई ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कंज्यूमर को कितना पसंद है प्रोडक्ट कितने कंप्लेंट्स आए हैं और कितने लोगों ने बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बुरा है इसको हटा दो. तो ये पूरा आइडिया से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है.
सही है बट आई विश के और ज्यादा मतलब ऐसे फूड्स प्रोडक्ट्स बने जो एनवायरमेंट को कम इम्पैक्ट करे. मतलब हाँ इट्स अ सिस्टम कि लोग बाय करेंगे पहले मुर्गी आई अंडा वही बात पे हम और ज्यादा चलेंगे. बट इट्स अ थिंग कि टेक्नोलॉजी भी उसके साथ इम्प्रूव होगी एंड कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होगा तो उसके बाद कंपनीज का भी वो चेंज होगा. क्योंकि अभी एक चीज तो है कि आई थिंक लास्ट टू ईयर में मैंने नोटिस किया है स्पेशली अमेरिका में बियॉन्ड मीट इज लाइक वेरी व्हाट टू से फेमस कीवर्ड कि हर कंपनी हर आउटलेट के वहां बियॉन्ड मीट चल रहा है. तो और वीगनिज्म इज लाइक ऑन द राइज. तो सबको सब कुछ वीगन बनाना है तो वो भी एक ट्रेंड चल रहा है. बट आई डोंट नो मैंने उसका भी कुछ सुना था कि अगर आलमंड जो मिल्क होता है वो कितना वाटर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल दिन. तो ऐसे कंपेरिजन काफी है. बट या इट्स अ रियली गुड कन्वर्सेशन. कैसा लगा?
बहुत मस्त.
इसे कहेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच कि तमे आ पॉडकास्ट ने अंत सुधी सांभळ्यो. जो तमारे कोई पण फीडबैक के कमेंट होय तो फील फ्री टू शेयर. जो तमे हमने कोई टॉपिक सजेस्ट करवा मांगता होय तो फील फ्री टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. तो मळीए नवा एपिसोड में नवी वातों साथे.